ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 13। अध्याय का शीर्षक है भगवान वराह का प्राकट्य। श्लोक संख्या 39। नमो नमस्ते खिल मंत्र देवता, द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने, वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभाविता, ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। नमो नमस्ते खिल मंत्र देवता, ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता, द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने, वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभाविता, ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। शब्दार्थ नमो नमः नमस्कार है ते आपको जो कि आराध्य है, अखिल सभी सम्मिलित रूप से मंत्र मंत्र देवता भगवान द्रव्याय यज्ञ संपन्न करने की समस्त सामग्रियों को सर्वकृतवे सभी प्रकार के यज्ञों को क्रियात्मने सभी यज्ञों के परम रूप आपको वैराग्य वैराग्य भक्त्या भक्ति द्वारा आत्मजय अनुभावितः मन को जीतने पर अनुभूत किए जाने वाले ज्ञानाय ऐसे ज्ञान को विद्या गुरवे समस्त ज्ञान के परम गुरु को नमो नमः। मैं पुनः सादर नमस्कार करता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद के अनुवाद इस प्रकार से है। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वैश्विक प्रार्थनाओं वैदिक मंत्रों तथा यज्ञ की सामग्री द्वारा पूजनीय है। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कर्म से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभव गम्य है। हम आपको भक्ति योग के ज्ञान के परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य भगवत भक्ति के लिए योग्यता यह है कि भक्तों को समस्त भौतिक कर्मशों तथा इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। यह मुक्त अवस्था वैराग्य अर्थात भौतिक इच्छाओं से विरक्ति कहलाती है। जो व्यक्ति विधि विधानों के अनुसार भक्ति में लगा रहता है वह सदा भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और उस शुद्ध मनोदशा में वो भगवान की अनुभूति कर सकता है। प्रत्येक के हृदय में स्थित होने से भगवान भक्त को शुद्ध भक्ति के विषय में शिक्षा देते हैं जिससे वह अंततः भगवान की संगति प्राप्त कर सके। इसकी पुष्टि भगवद गीता में इस प्रकार से हुई है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम के साथ निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसे अंत में भगवान निश्चित रूप से अपने को प्राप्त करने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। मनुष्य को मन जितना होता है और वह ऐसा वैदिक अनुष्ट द्वारा तथा विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करके कर सकता है। इन समस्त कार्यों का चरम अंत भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। भक्ति के बिना भगवान को नहीं समझा जा सकता। आदि भगवान या उनके असंख्य विष्णु अंश ही समस्त वैदिक अनुष्ठानों तथा यज्ञों के द्वारा पूजा के एकमात्र लक्ष्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तगाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो नमस्ते खिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्व कृतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्म जयान भाविता ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। हे प्रभु आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वैश्विक प्रार्थना व वैदिक मंत्र तथा यज्ञ की सामग्री द्वारा पूजनीय है, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कर्म से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभव गम्य है। हम आपको भक्ति योग के ज्ञान के परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा। तो कई दिनों से ये जो विशेष अध्याय श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध का भगवान वराह देव का प्राकट्य उनका वर्णन हो रहा है, तो यहाँ जो ऋषिगण है वो प्रार्थनाएं या स्तुतियां भगवान वराह देव को अर्पित कर रहे हैं। तो ये जो भागवतम की जो चर्चा है शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के माध्यम से हो या सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि जिनका नेतृत्व शौनक ऋषि कर रहे थे, उनकी ये चर्चा इसको सुनना वास्तव में जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कोई कहे कि मेरे लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है तो वो एक ही है, भगवान के बारे में श्रवण करना और भगवान का अपने जीवन से निरंतर गुणगान करना। इसलिए कलयुग की शुरुआत में इस चीज को सिखाने के लिए एक अद्भुत घटना घटित होती है। कौन सी घटना? जिस पर जहां श्रीमद् भागवतम का जन्म होता है। एक तो है व्यासदेव का जो मनोदशा थी, असंतुष्टि थी, और दूसरी घटना क्या है? परीक्षित महाराज श्रृंगी नामक छोटे से बालक के द्वारा शापित हो जाते हैं, और शापित होकर परीक्षित महाराज कली के शुरुआत में ही कलयुग के शुरुआत में वो इस महत्वपूर्ण अंग को स्वीकारते हैं या उसके साथ चिपक जाते हैं। कौन से अंग से? श्रीमद् भागवतम से। इसलिए परीक्षित महाराज सबसे पूछते हैं अलग अलग साधु ऋषि मुनिगण आदि, और फिर इस निष्कर्ष पर निकल आ जाते हैं कि वास्तव में एक ही चीज सर्वाधिक लाभप्रद है और वो है शुकदेव गोस्वामी के द्वारा भगवत कथामृत का श्रवण करना, भगवान की महिमा का निरंतर अपने कानों के माध्यम से पूर्ण एक चित्त होकर श्रवण करना, जिसको परीक्षित महाराज ने सुना और सुनने के बाद क्या हो गया, शोक मोह भयापह। व्यासदेव लिखते हैं कि ये भगवत चर्चा इतनी उत्तम है या लाभप्रद है, व्यक्ति जीवन की किसी भी स्थिति से गुजर क्यों ना रहा हो, चाहे सुखमय स्थिति हो दुखमय स्थिति हो, कई प्रकार की विपदाएं क्यों ना हो, लेकिन वो यदि इसका आश्रय ग्रहण करता है, भगवान के गुणगान का अपने जीवा से गुणगान करता है और उसको सुनता है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन का शोक मोह और भय दूर हो जाता है। इसलिए परीक्षित महाराज कहते कि मुझे ना तो भूख है ना प्यास है ना निद्रा आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है, आप क्या करो शुकदेव गोस्वामी, इस अमृतमय चर्चा को कंटिन्यू करो। इसलिए जब भागवतम के द्वितीय स्कंध में परीक्षित महाराज अपना अनुभव रियलाइजेशन वर्णन करते हैं, वो कहते हैं काले न अति दीर्घे न भगवान विशते हृदि, उनका ये वक्तव्य है। वो कहते हैं यदि व्यक्ति बहुत ही गंभीर होकर एक चित्त से भगवान के कथा का आश्रय ग्रहण करता है, तो वो व्यक्ति कृष्ण को अपने हृदय में कैप्चर कर सकता है। काले न अति दीर्घे न, वो कहते टाइम नहीं लगेगा, न आते दीर्घे न भगवान विशते हृदय, भगवान उस व्यक्ति के हृदय में थम जाते हैं, बंद जाते हैं, हाँ, और आ जाते हैं। इसलिए ये बेस्ट वे है कृष्ण को अपने हृदय में कैप्चर करने का, श्रीमद् भागवतम का आश्रय ग्रहण करना, और वास्तव में यही जीवन का लक्ष्य है। क्या जीवन का लक्ष्य है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तनीय सदा हरि मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, ये जीवन का लक्ष्य है कीर्तनीय सदा हरि, कि किसी भी स्थिति में हम क्यों ना हो, हम निरंतर भगवान की महिमा का गान कर सके, उनकी प्रशंसा कर सके, और ये तभी होगा जब क्या करेंगे हम, इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को केवल एक घंटे के लिए नहीं, हाँ, गंभीरता से जो प्रभुपाद ने जो ग्रंथ दिया है उसको हम समझते हैं सुनते हैं, तो निश्चित रूप से उसका जो पूरा लाभ है वो हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के श्लोक में यदि देखें तो ऋषिगण बहुत प्रकार की स्तुतियां भगवान को अर्पित कर रहे हैं, और वास्तव में जो भागवतम की प्रार्थनाएं हैं वो भागवतम का सार है। जब भगवान की कई प्रकार की लीलाएं होती हैं तो आचार्यगण कहते हैं कि भगवत लीला का कुछ सार है तो वो भक्तों के द्वारा अर्पित की गई जो प्रेयर्स है या भगवान की स्तुतियां हैं, वो वास्तव में भगवत लीला का एक में क्या है, सार है। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के अलग अलग अंगों का जब वर्णन करते हैं और वंदनम का वर्णन करते हैं, तो वो कहते हैं कि वास्तव में वो व्यक्ति अति धन्य है इस संसार में जिसकी जीवा भगवान की प्रेयर्स या भगवान की स्तुतियों स्तुति रूपी रत्नों से जड़ित रहती है। ऐसे व्यक्ति का जो ऐसे व्यक्ति की पूजा देवतागण महान ऋषिगण भी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, और उसके उदाहरण साक्षात शुकदेव गोस्वामी हैं। आयु में सबसे छोटे हैं, लेकिन वो इतने उन्नत हैं, इतने प्रशंसनीय हैं कि जिनके द्वारा भगवान की प्रशंसा और महिमा को सुनने के लिए व्यासदेव नारद और जितने भी इस पृथ्वी लोक में ऋषिगण हैं वो भी उनके समक्ष या उनके सामने एक चित्त होकर बैठकर भगवान की महिमा को सुनते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये विशेष अंग है, इसी कारण से प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का नाम उत्तम श्लोक है। क्यों उत्तम श्लोक है? क्योंकि भगवान की जो स्तुतियां हैं, भगवान का जो गुणगान है, वो चुने हुए शब्दों के द्वारा, चुने हुए काव्य के द्वारा, चुने हुए श्लोकों के माध्यम से किया जाता है। इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया है। और इसलिए कहते हैं उत्तम श्लोक वार्ताया, कि व्यक्ति को भगवान के इन गुणों को, उत्तम चर्चा को निरंतर सुनना चाहिए। तो ऐसे ये ऋषिगण क्या कर रहे हैं, ऐसी कई प्रकार की स्तुतियां या प्रार्थना अलग अलग श्लोकों के माध्यम से अर्पित कर रहे हैं। और इस श्लोक में कई बार वो केवल भगवान को नमन कर रहे हैं। अभी हम अपने मन से इतने परेशान हैं, अलग अलग धरातल पर अलग अलग समय में हम, हमारा जो पागल मन है हमें परेशान कर देता है। तो लेकिन इस मन को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं इस मन के आगे एक ही चीज लगाओ, वो क्या है, ना, नमन हो जाएगा। हाँ, यदि मन के आगे न शब्द जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं नमन, और नमन का मतलब ही है भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण शरणागति को अपने जीवन में स्वीकार करना। तो ऐसे ये जो ऋषिगण आज के श्लोक में अपना ये उदाहरण दिखा रहे हैं और बारंबार भगवान को नमन कर रहे हैं। कितनी बार कर रहे हैं? लगभग 4 बार नमन शब्द आया है, या नमः वो कहते हैं। बल्कि कोई कहे कि नमन या प्रणाम, जिसको हम प्रणाम कह सकते हैं, तो ये जो प्रणाम है ये बहुत छोटा सा कार्य है। भक्ति में आने के बाद हम सोचते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है, भगवान की महिमा स्थापित नहीं करनी है। हम सोचते हैं कि मुझे ऐसा कार्य करके जाना है कि मेरी जो महिमा है आने वाले युगों युगों तक लोग क्या करते रहे, गाते रहे। लेकिन वास्तव में कृष्ण इन सब चीजों की, कृष्ण को कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन भगवान किसी व्यक्ति के द्वारा गंभीरता से, समर्पित भाव से यदि कोई व्यक्ति छोटा सा प्रणाम अर्पित करता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। इसको कहते हैं कि एक छोटा सा कार्य है लेकिन लाउड कॉल है, छोटा सा कार्य है लेकिन बड़ी उसकी आवाज है कि भगवान भी उस चीज को गंभीरता से ध्यान देते हैं। हाँ, प्रणाम के लिए कई बार हम प्रणाम भगवान को करना या भक्तों को करना या महान वैष्णवों को अर्पित करना बड़ा साधारण सा लेते हैं। अभी कहते इतना प्रणाम कर ही दिया कि कब तक प्रणाम करते रहे। और वास्तव में देखे सुबह से शाम तक हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में केवल क्या है, प्रणाम ही प्रणाम है। उठते ही जब आंख खोलते हैं तो आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण का स्मरण करते हुए हम उनको प्रणाम अर्पित करते हैं। और मंदिर में पहुंचते कि नहीं तो शुरुआत में वो लाइन ही चार्ट करते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंद, वो खत्म होता है तो हम श्रीमद् भागवतम क्लास की शुरुआत में भी आध्यात्मिक गुरु या तुलसी महारानी आदि जितने भी ये प्रेयर्स है पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम में, उसमें वास्तव में केवल नमस्कार या प्रणाम या नमन छुपा हुआ है। नारायणं नमस्कृत्यं भागवतम की शुरुआत में हम उच्चारित करते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि चाहे दिनचर्या को ले तो हम पूरे दिन में केवल हम भगवान को अपना प्रणाम अर्पित कर रहे हैं। और वास्तव में कोई कहे कि मेरे पास बहुत कुछ है भगवान को अर्पित करने के लिए, वो व्यक्ति अज्ञानी है। हमारे पास भगवान को एक प्रणाम अर्पित करने के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने मठ में घुस रहे थे, बहुत बारिश हो रही थी, तो उनका एक शिष्य छाता लेकर वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर ही रहे थे तो देखा कि उनका एक गृहस्थ भक्त आ रहा था मठ से बाहर, अपने पत्नी के साथ घर जा रहा था और धुआंधार बारिश हो रही है, कीचड़ ही कीचड़ है सब जगह। और अपने आध्यात्मिक गुरु को देखते ही वो कीचड़ में दंडवत मार दिया उन्होंने। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते नहीं नहीं मत करो मत करो। वो कहता है, हे गुरुदेव, मेरे पास हाँ कुछ है नहीं आपको अर्पित करने के लिए, यही मेरा एकमात्र धन है जो मैं आपको क्या कर सकता हूँ, अर्पित कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से प्रणाम करने का मतलब है, श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि शरणागति की जो विधि है उसको अपने जीवन में स्वीकार करना। मीन्स हे कृष्णा, मैं तैयार हूं, ये जो प्रोसेस आपके भक्तों ने प्रदान की है आपके शरणागति की, उसको मैं अपने जीवन में स्वीकार कर रहा हूं। उसी को भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, सर्वस्व तुम्हार चरणे संपिया, कि आपके चरणों में मैं अपना सर्वस्व क्या कर रहा हूं, अर्पित कर रहा हूं। मानस देह जो किछु मोर अर्पिलो त्वापदे नंद किशोर, हे नंद किशोर कृष्ण, मैं अपना मन धन शरीर आदि आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। हाँ, इसलिए एक छोटा सा प्रणाम वास्तव में भगवान की ओर एक कदम डालने के समान है। हाँ, इस प्रकार से तो भगवान स्वीकार करते हैं। गिलहरी ने कौन सा बड़ा कार्य किया है? गिलहरी ने देखा सब लोग बहुत बड़ा बड़ा कार्य किया है, उसने क्या किया, सेवा करने की डिजायर व्यक्त की, केवल इच्छाएं नहीं बल्कि कार्य भी किया। बस केवल थोड़ा सा मिट्टी अपने बालों में डाली और वो लेकर चल पड़े। भगवान राम उसके छोटे से कार्य से क्या हो गए, आकृष्ट हो गए। छोटा सा कार्य है लेकिन भगवान के लिए वो बहुत बहुत बड़ा है। इस प्रकार से यदि एक कदम हम कृष्ण की ओर डालते हैं केवल नमन या प्रणाम के द्वारा, शास्त्र कहते हैं कृष्ण हजारों कदम हमारे ओर आते हैं। अभी रिसेंटली चीड़ा दही भी उत्सव हुआ था, जिसमें आपने सुना होगा रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि अरे क्या बात है कि मैं इतने बार महाप्रभु के पास जाने का प्रयास किया फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। तो उनको पता चला अपनी गलती क्या, कि नित्यानंद प्रभु का आश्रय में स्वीकार नहीं कर रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु तो नित्यानंद प्रभु के एक में वो धन है और उस धन को मैं प्राप्त करना चाहता हूं बिना उनकी कृपा के। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि पानीहट्टी ग्राम में नित्यानंद प्रभु आए हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनको मिलने के लिए चलते हैं और देखते हैं कि गंगा के तट पर एक बड़े वृक्ष के चबूतरे के ऊपर श्रीमान नित्यानंद प्रभु विराजमान है अपने भक्तों के संग में। हाँ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी थोड़े से डर जाते हैं और दूर से ही प्रणाम करते हैं, बहुत दूर से। फिर एक भक्त कहता है नित्यानंद प्रभु को, देखो देखो वो रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु उठ के खड़े हो जाते हैं, कहते आए से चोरा, अरे चोर इधर आओ इधर आओ, भी आ ही नहीं रहे थे। हाँ, नित्यानंद प्रभु उनके पास जाते पकड़ते हैं, पकड़ के लाते हैं और क्या करते हैं, दो प्रकार का दंड देते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं पहला दंड क्या दिया, जबरदस्ती फोर्सफुली अपने चरण कमल रघुनाथ दास गोस्वामी के माथे पर रख दिए। अभी ये दंड है या आशीर्वाद है, शाप ही वरदान बन गया, जैसे परीक्षित महाराज का जीवन है। तो वैसे ही उनके प्रणाम और उनकी ये जो सरलता जब देखी नित्यानंद प्रभु ने, हम उनका ये जो सर्वस्व अर्पित करने की भावना प्रणाम के माध्यम से, तो नित्यानंद प्रभु ने पकड़ लिया उनको, लाया और अपनी कृपा का वर्षा किया। तो इस प्रकार से वास्तव में देखा जाए ये छोटा सा कार्य है लेकिन भगवान को पूर्ण रूपे न आकृष्ट करता है। इसलिए कृष्ण गीता में दो बार हमसे अपेक्षा करते हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कारो, 9वें अध्याय के अंत में, और गीता के 18वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं अरे मैं मुझे अपना मन अर्पित करो, मेरा भक्त बनो और मुझे ही नमस्कार करो। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान हमसे अपेक्षा करते हैं और वास्तव में सिंसियरली हम भगवान को प्रणाम अर्पित करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि निश्चित रूप से उस व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक
जितने भी कार्य हैं, हाँ चाहे कोई भी कार्य ले तो उनका एक ही फल है, चित्त की शुद्धि, हृदय का मार्जन। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में जब भगवान का गुणगान किया जाता है तो उसमें ये प्रणाम की विशेषता का वर्णन करते हैं शुकदेव गोस्वामी। वो कहते हैं, देहं सदा परिभव नमभिष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दं। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, उसका अनुवाद पढ़ता हूं। हे प्रभु, आप महापुरुष हैं और मैं आपके उन चरण कमलों की पूजा करता हूं जो शाश्वत ध्यान के एकमात्र लक्ष्य हैं। वे चरण भौतिक जीवन की चिंताओं को नष्ट करते हैं और आत्मा की सर्वोच्च इच्छा शुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति प्रदान करते हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमल समस्त तीर्थ स्थानों के तथा भक्ति परंपरा के समस्त संत महापुरुषों के आश्रय हैं और शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवताओं द्वारा सम्मानित होते हैं। हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं कि आप उन सबों की स्वेच्छा से रक्षा करते हैं जो आदर पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। इस तरह आप अपने सेवकों के सारे कष्टों को दया पूर्वक दूर करते हैं। तो यहाँ भगवान को एक शब्द यूज किया है, प्रणत पाल। प्रणत का मतलब है, जिसके शब्दार्थ में कहते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान को केवल प्रणाम ही करता है तो भगवान उसके रक्षक बन जाते हैं, उन सबके रक्षक जो आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से उसके तात्पर्य में लिखा गया है, भगवान को जो प्रणाम करने की जो महिमा है, जिसमें कहते हैं वृत्यार्थिहं प्रणतपाल। शब्द यह इंगित करते हैं कि यदि बिना द्वेत के कोई व्यक्ति भगवान के चरणों पर शीश झुकाता है तो भगवान ऐसे निष्ठावान व्यक्ति को समस्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस श्लोक में इसका उल्लेख नहीं है कि मनुष्य को भगवान का उच्च कोटि का भक्त होना चाहिए, प्रत्युत ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमल पर केवल शीश झुकाता है तो उसे सारी सुरक्षा प्रदान की जाती है और ये उस पर भी लागू होता है जो चैतन्य महाप्रभु के मिशन की सेवा करने का प्रयास करता है। यहाँ तक कि नवदीक्षित भक्त को भी भगवत कृपा से समस्त संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान प्रणतपाल है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति उनको केवल प्रणाम भी करता है तो भी भगवान पूर्ण रूपेण उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर होते हैं। और वास्तव में कौन है प्रणाम लेने योग्य? तो शास्त्र कहते हैं भगवान कृष्ण और वैष्णव या गुरुगण, जिसको तदीय कहा गया है। जो भी भगवान से संबंधित है वास्तव में वो प्रणाम करने के योग्य है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को वैष्णवों के रूप में देखते थे और अपने डिसाइपल जब आते थे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने दो हाथ जोड़ते थे और उनको कहते थे दासोस्मी, मैं आपका क्या हूं? दास हूं। हाँ, तो इस प्रकार से महाप्रभु इवन जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जा रहे थे सर्वप्रथम, तो वो अपने आध्यात्मिक गुरु के गांव में गए। जैसे उस गांव में पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, प्रभु बोले कुमार हट्टेरा नमस्कार श्रीश्वर जे ग्रामे अवतार। वो कहते हैं कि मैं कुमार हट को भी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरे आध्यात्मिक गुरु का जन्म कहाँ हुआ है? कुमार हट में हुआ है। तो जो भी भगवान से संबंधित है, वैष्णव से संबंधित है, उन सारी चीजों को हमें प्रणाम करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास इसलिए लिया था कि सारे लोग मुझे प्रणाम करें, क्योंकि प्रणाम करने से क्या होगा?
आमाके प्रणति हय हय पापक्षाय, कि यदि ये लोग मुझे प्रणाम करेंगे तो सारे पापों से उनका विनाश हो सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि दो चीजों को देखते ही व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए। देवता प्रतिमां दृष्ट्वा यतिं चैव त्रिदण्डिनां नमस्कारं न कुर्यात् या प्रायच्छति यते नरः। तो व्यक्ति जब भगवत विग्रह को देखता है, गुरु और वैष्णव को देखता है, तो उसे प्रणाम करना चाहिए, और विशेष रूप से सन्यासी को। शास्त्र कहते हैं सन्यासी को यदि व्यक्ति न देखकर प्रणाम नहीं करता है, प्रणाम उनको देखकर प्रणाम नहीं करता है, तो उसका अपराध है। उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका प्रायश्चित है कि एक दिन के लिए फास्टिंग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम व्यक्ति को निरंतर अपने हृदय में ये भावना होनी चाहिए, हाँ, प्रणाम करने की या नमस्कार करने की भावना। और इसी कारण से यदि ये जो भाव हमारे अंदर नहीं होता तो हम सब प्रकार से अनादर और अपराध के भागी बनते हैं। जैसे इंद्र का उदाहरण आता है छठे स्कंद में, इंद्र का वर्णन करते हुए परीक्षित महाराज ने जब पूछा कि क्या हो गया कि ये जो बृहस्पति है, जो देवतागण है, वो हर गए, पराजित हो गए, तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं उसका कारण एक ही है, ये इंद्र ने अपने आध्यात्मिक गुरु का आदर और उनको प्रणाम नहीं किया। जब ये इंद्र मदमत्त हो गया था, वर्णन आता है स्वर्ग में इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ एक सिंहासन पर विराजमान थे और सारे अलग अलग देवगण अलग अलग आसनों में बैठे थे, ब्रह्मा उर्वशी आदि सारी जो अप्सराएं हैं वो नृत्य कर रहे थे, और इंद्र के हृदय में अपना सर्वोच्च पद और अपना जो ऐश्वर्य है उसका अहंकार छा गया था, मदमत्त हो गया था इंद्र। क्योंकि हम हिचकिचाहट करते हैं जब अभिमान हमारे हृदय में क्या करता है, स्थान ग्रहण करता है, तो अचानक ये सब स्थिति में वह आगमन होता है बृहस्पति, देवताओं के गुरु, जिनका आदर आसुर भी करते हैं, ऐसे विशेष है बृहस्पति। तो जब उनका आगमन हुआ तो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए कुछ केयर ही नहीं की, ये अपने नशे में मदोन्मत्त था। कौन सी नशा, एक तो अपना इंद्र पद और दूसरा भोग करने का जो साधन है, धन है, ऐश्वर्य है, सुविधाएं हैं, जिनके कारण उसने ध्यान नहीं दिया। और ये देख समझ गए बृहस्पति, बृहस्पति समझे कि मेरा ये जो शिष्य है अभी इसको बड़ा पद धन ऐश्वर्य सभी प्राप्त हो गया है, जिसके कारण ये अंधा हो गया है और आदर करना भूल गया है। तो बृहस्पति कुछ शब्द उच्चारण नहीं करते, बृहस्पति उस स्थान को छोड़कर अपने घर वापस जाते हैं, और जैसे ही वो चले जाते हैं तो उस समय जो इंद्र है वो फिर समझ जाते हैं, उनको ग्लानि होती है। फिर इंद्र एक एक विशेष श्लोक बोलते हैं, इंद्र कहते हैं अहो पत्मया साधु कृतं वैदव्र बुद्धिनः यन्मयैश्वर्यमत्तेन गुरु सदसि काकृतः। वो फिर अपनी स्वयं की भर्त्सना करने लगते हैं, कहते कैसा मैं व्यक्ति हूँ, कहते हैं कि सत्व गुणी व्यक्तियों में मैं श्रेष्ठ हूँ देवताओं में, लेकिन फिर भी मैं कैसा इतना गिर गया अपनी स्थिति से। अहोपत मया साधु, हाँ, किस प्रकार से मेरे से ऐसा घृणित कार्य हुआ है, हाँ? वह दब्र बुद्धिना, वो कहते हैं कि मेरे अल्प बुद्धि के कारण मैं अपने ऐश्वर्य से मत्त हो गया, और जिसके द्वारा मैंने क्या किया, जब मेरे गुरु इस सभा में प्रविष्ट हुए तो मैंने उनका सत्कार क्यों नहीं किया, सचमुच मैंने उनका अनादर किया है। इस प्रकार से जो इंद्र है वो अपनी भर्त्सना करते हैं, और वास्तव में ये जो अभिमान का भाव जब व्यक्ति के अंदर आता है तो फिर वो भगवान वैष्णव गुरु और भगवान से संबंधित वस्तुओं के प्रति सावधान नहीं होता। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं वंदो में सावधान मते, कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, इन सब की वंदना करने के लिए या वंदना करने में अत्यंत सावधान होना चाहिए। और इस सावधानी का उदाहरण महाराज रघुगण है भागवतम में। महाराज रघुगण के द्वारा एक गलती हो गई थी, वो कश्मीर से कहा जा रहे थे गंगा सागर, इसलिए कपिल देव से श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए कहां से कहां की यात्रा है, हाँ कश्मीर कहा गंगा सागर कहा, और उस समय हम पालकी में जा रहे हैं, कब पहुंचेंगे भागवत सुनने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी इच्छा को लेकर जा रहे हैं। पालकी में महाराज रघुगण जब जा रहे थे तो चार जो उनको ढोने वाले सेवक हैं उनमें से एक थोड़ा सा बीमार हो गया शायद, या थोड़ा सा कम कुवत था, तो उन्होंने देखा कि अरे ठीक से नहीं जा रही है पालकी, तो देखा कौन और एक मिल सकता है, तो वहां कौन थे, जड़ भरत महान भक्त, लेकिन वो ऐसा आचरण कर रहे थे मानो वो सबसे घृणित व्यक्ति है, कोई वो भक्त आदि नहीं है, सर्वसाधारण व्यक्ति की तरह वो आचरण कर रहे थे, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा अंतरे निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार। तो ऐसे जब जड़ भरत को उन लोगों ने पकड़ा, देखा कि हट्टा कट्टा मोटा ताजा है, लगा उसको पालकी ढोने के लिए, लगा दिया और लगाया तो ये बारंबार हिल रहा है, क्योंकि जड़ भरत जब पालकी ढोते हुए चल रहे थे तो वो नीचे देखते थे कि पांव चींटी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, चींटी आ जाए तो जब मारते थे तो पूरा राजा हिल जाता था ऊपर। तो राजा को ने सोचा ये कौन से मूर्ख को पकड़ के लाए हो, तो तीनों ने कंप्लेंट किया, कहा ये है जिसके कारण ये जो पालकी हिल रही है। तो राजा कई सारे शब्द बोलने लगा, फिर जड़ भरत बोलने लगे कि आप तो केवल मेरे शरीर को संबोधित कर रहे हो। राजा कहने लगा तुम तो इतने हट्टे कट्टे मोटे ताजे हो, क्यों नहीं पालकी ठीक से ढो रहे हो। तो ये कहते हैं सारे संबोधन जो आपने यूज किए हैं वो केवल मेरे शरीर के लिए है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से क्या हूं, अभिन्न हूं। जैसे ऐसे जड़ भरत का वक्तव्य सुना, रघुगण ने सोचा भागवत क्लास अभी यही होनी चाहिए, अभी मुझे कपिल देव के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत अपने पालकी से उतरे, उनके चरणों में गिरे, प्रणाम करते हुए उनकी शरण ग्रहण किया और उन्होंने कहा कि आप मुझे लाभान्वित कीजिए, शिक्षा प्रदान कीजिए, क्योंकि आपके वक्तव्य से पता चलता है कि आप कोई मूर्ख साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मूर्ख व्यक्ति का पता तब चलता है जब वो बोलता है, इसलिए हम बोलते कम है। इस कारण से जब रघुगण ने देखा कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, तो रघुगण का जो वृत्तांत है भागवतम में और शिक्षाप्रद है, उसके अंत में रघुगण महाराज कहते हैं, वो फिर सबको प्रणाम करते हैं, कहते मैंने एक गलती कर दी है ताकि मुझसे कोई अनादर अपराध नहीं होना चाहिए, इसलिए वो कहते जितने भी इस पृथ्वी में बालक है, युवक है, साधु मुनि जो पूरे झाड़ियों में कहां कहां रह रहे हैं सबको मेरा प्रणाम, क्योंकि मुझसे क्या नहीं होना चाहिए, कोई अवहेलना नहीं होनी चाहिए, यदि ऐसी अवहेलना जब मुझसे हो जाएगी तो भगवत कृपा मेरे जीवन में अनुकूल नहीं हो सकती, जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा यश प्रसादात भगवत प्रसादो, यश अप्रसादात न गतिकृतोपि। तो ऐसे सावधान होते हैं महाराज रघुगण। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि व्यक्ति को सदैव तत्पर होना चाहिए, भगवान वैष्णव गुरुगण और भगवान से संबंधित वस्तुओं के सामने झुकने के लिए। इसलिए भागवतम के दूसरे स्कंद में शुकदेव गोस्वामी उन लोगों को बहुत उनकी बहुत खिंचाई करते हैं। वो कहते हैं भारम परम पट्ट किरीट जुष्टम अप्युत्तमांगम न नमे मुकुंदम। वो कहते हैं कि क्या लाभ रेशम से बनी हुई पगड़ी को अपने सर में धारण करने से क्या लाभ, वो बोझा है, वो आपको डुबा देगा। यदि न नमे मुकुंदम, वो पगड़ी के साथ आपका सर किसके सामने नहीं झुकता है, मुकुंद जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं ऐसे कृष्ण के सामने नहीं झुकता, तो वो वास्तव में क्या है, इस संसार में डुबोने के लिए केवल योग्यता रखता है। इसलिए ये जो ऋषिगण है बारंबार भगवान को अपना प्रणाम या नमस्कार अर्पित करते हैं, और जिससे हमें सिखाते हैं कि हमें बिना किसी हिचकिचाहट के यह हमारा कर्तव्य है और एक भक्ति का विशेष अंग है जिसके द्वारा हमारी शुद्धि होना निश्चित है, जिससे हम जो मिथ्या अहंकार अभिमान की भावना है उससे चूर उससे रहित होने लगते हैं। तो ऐसी जब स्थिति होगी तभी जो भगवत भक्ति है उसमें हम उन्नति कर सकते हैं। और इस तात्पर्य में बहुत सारी चर्चा श्रील प्रभुपाद ने की है, लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से केवल भगवान को समझा जा सकता है, और सारे शास्त्र भगवत भक्ति की बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही केवल कृष्ण अनुभव गम्य है, और इसी की शिक्षा देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे। इसलिए जब सार्वभौम भट्टाचार्य इतने बड़े ब्रह्मवादी थे, मायावादी थे, दार्शनिक थे, ज्ञानी थे, वो अपने सारे चीजों को छोड़ते हैं और भगवान की शरण स्वीकार करते हैं, भक्ति योग स्वीकार करते हैं। जिस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान मुक्ति आदि शब्द सुनना बहुत रोचक लगता था, ऐसा व्यक्ति मुक्ति शब्द सुनना उसको अच्छा नहीं लग रहा था जब वो चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की जो सबसे बड़ी देन है वो है भक्ति योग जो उन्होंने प्रदान किया है या रिवाइव किया है। इसलिए एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जगन्नाथ मंदिर गए तो अपने साथ दामोदर स्वरूप दामोदर और जगदानंद पंडित भी थे उनके साथ। जब मंदिर से वापस आए तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु अपने गंभीरा में निवास कर रहे हैं, उनके लिए कुछ प्रसाद भेजता हूँ। अभी चैतन्य महाप्रभु के प्रति सार्वभौम भट्टाचार्य का बहुत अधिक भगवत भक्ति और सेवा का भाव जो है वर्धित हो गया था, तो इन्होंने सोचा कि कुछ प्रसाद भेजता हूँ। तो अपने जगन्नाथ का प्रसाद लाए, प्रसाद दिया बहुत सारा उनके हाथ में, और चैतन्य महाप्रभु की स्तुति उन्होंने दो श्लोकों में लिखी, दो श्लोक लिखे जिसमें चैतन्य महाप्रभु का वर्णन था, वर्णन किया था सार्वभौम भट्टाचार्य ने। और ताल पत्र में जो लिखा था वो ताल पत्र जगदानंद पंडित के हाथ में दिया और कहा कि आप जाकर चैतन्य महाप्रभु को दीजिए प्रसाद और ये ताल पत्र। तो ये जगदानंद पंडित जब महाप्रभु का जो गंभीरा आलय है उसमें प्रवेश कर ही रहे थे तो रास्ते में एक भक्त मिला। हाँ, होते ना कोई प्रसाद लेके जा रहे, कहाँ जा रहा है, किसके लिए लेके जा रहा है, कुछ नहीं तो थोड़ा सा ले ही लेते, चलो मैं आदर करता हूँ प्रसाद। वहां भी मुकुंद आकर पहुंचे, कहाँ जा रहे हो, अंदर जा रहा हूँ, हम सर्व भट्टाचार्य के वहां से आया हूँ, और उन्होंने प्रसाद और एक ताल पत्र दिया है। मुकुंद बहुत बड़े गायक है, महाप्रभु नाचते थे केवल जब मुकुंद गाया करते थे और स्वरूप दामोदर भी। तो ऐसे जब मुकुंद ने देखा ना ताल पत्र भी है, इसमें देखा कि क्या लिखा हुआ है, देखा कि दो श्लोक लिखे हुए हैं और जो महाप्रभु की जो शिक्षा है या महाप्रभु की जो देन है उसको प्रदर्शित कर रहे थे।
तो मुकुंद ने क्या किया, मुकुंद बहुत बुद्धिमान थे, मुकुंद ने तुरंत वो श्लोक महाप्रभु का जो आलय है निवास स्थान है उसके बाहर दरवाजे पर दीवार में लिख दिया। उनको पता था अंदर जाकर इन दो श्लोकों का क्या होने वाला है। तो जगदानंद पंडित अंदर गए और चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद और वो ताल पत्र दिया जिसमें दो श्लोक थे। तो चैतन्य महाप्रभु उन दो श्लोकों को पढ़ते हैं तो पहले उस ताल पत्र के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं और फेंक देते हैं, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु का जो मूल स्वरूप है उसको प्रदर्शित किया था, उसको दिखाया था, उनके कार्य को भी बताया था उन श्लोकों में, जिसमें सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुष पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीर दारे कृपां बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। मैं ऐसे कृपा के सागर और चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहा हूं जो क्या करने आए हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, जो वैराग्य की विद्या और भक्ति योग को प्रदान करने के लिए आए हैं। और फिर वो दूसरे श्लोक में कहते हैं, काला नष्टम भक्ति योगम निजम ये प्रादुष्कृतम कृष्ण चैतन्य नामा आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे गाढ़ं गाढ़ं लीयताम चित्तभ्रंगः। वो कहते हैं मेरा जो भ्रंग या भ्रमर रूपी जो चित्त है वो पूर्ण रूपेण चैतन्य महाप्रभु के कमल रूपी चरणों में लीन हो जाए, उसमें लग जाए। क्यों? क्योंकि जो बहुत काल से नष्ट हुआ भक्ति योग है उसको महाप्रभु ने आकर स्थापित किया है। और महाप्रभु की विशेषता क्या है, कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत के एक अध्याय की शुरुआत में ही कहते हैं, चिराद दत्तम निजगुप्त वित्तम। वो कहते हैं कि लंबे समय तक जो महाप्रभु का कृष्ण का सबसे बड़ा धन अपना जो प्रेमा भक्ति है वो उन्होंने प्रदान नहीं किया, वो देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो ऐसे महाप्रभु की देन है ये जो भक्ति योग। और भक्ति योग में क्या, भगवान कृष्ण का जो प्रेम है या भगवान कृष्ण के जो अहेतु की प्रीति है वो चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान की है। तो ये विशेष देन है भक्ति योग जो श्रील प्रभुपाद ने सारे जगत तक पहुंचाया है और जिसको अपने ग्रंथों के माध्यम से विशेष रूप से भगवद गीता भागवतम और चैतन्य चरितामृत के माध्यम से सारे जगत को समझाया है। तो इस भक्ति योग को समझना है, भगवत भक्ति को समझना है, तो प्रभुपाद के जो ग्रंथ है तीन इनका गंभीरता से व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए। हाँ, ये कोई ज्ञान नहीं है उनका अध्ययन करना, वो क्या है, भक्ति का अनुशीलन है। इसलिए भगवान केवल भक्ति के द्वारा जाने जा सकते हैं, लेकिन कौन सी भक्ति के द्वारा, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा या शुद्ध भक्ति के द्वारा, जिसका वर्णन नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ प्रेम भक्ति चंद्रिका में किया है। नरोत्तम दास ठाकुर का ये जो ग्रंथ है प्रेम भक्ति चंद्रिका, उसको रूपानंद गीता गीता कहा जाता है, जो रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं उन भक्तों के लिए गीता है वो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने छह गोस्वामियों को आदेश दिया था कि भक्ति से युक्त, कौन सी भक्ति, प्रेम भक्ति से युक्त ग्रंथों की रचना करो। बाकी ग्रंथों में ठीक है भक्ति मिल सकती है, लेकिन जो प्रेमा भक्ति का वर्णन है वो केवल महाप्रभु के अनुयायी विशेष रूप से छह गोस्वामियों के ग्रंथ में प्राप्त होता है। और उन छह गोस्वामियों के ग्रंथों का सार नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रदर्शित किया है प्रेम भक्ति चंद्रिका के रूप में, जो उनका निचोड़ है। और उसमें वो अनन्य भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, जिसके द्वारा कृष्ण को समझा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है,
वो एक श्लोक में पहले अध्याय में उसके वर्णन करते हैं, जिस जो अध्याय है जिसका शीर्षक है गुरु महिमा, जिसमें हम ये वंदना पढ़ते हैं श्री गुरु चरण पद्मा, उसका अगला ही जो सॉन्ग है जिसमें वो कहते हैं अन्य अभिलाष छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरे काय मने करिबो भजन साधु संगे कृष्ण सेवा ना पूजिबो देवी देवा यही भक्ति परम कारण। वो कहते हैं कि अन्य अभिलाष छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरे, तो इसमें नरोत्तम दास ठाकुर जो परम पुरुषार्थ है पंच पुरुषार्थ प्रेम का वर्णन करते हैं, वो कहते हैं केवल भगवान को प्राप्त करने का परम साधन है अनन्य भजन या प्रेमा भक्ति। और जिस जो कौन सी भक्ति, अनन्य भक्ति का मतलब है जो दो प्रकार की उपाधियों से रहित होनी चाहिए। अब वो उपाधियां क्या है, एक उपाधि है अन्य अभिलाषा और दूसरी उपाधि रूप। वो कहते हैं अन्य मिश्रण। तो नरोत्तम दास ठाकुर शुद्ध भक्ति के ये दो चीजों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शुद्ध भक्ति के ऊपर ये दो प्रकार की उपाधियां यदि जड़ित होगी तो उसके द्वारा भगवान को समझना या जानना असंभव है। एक है अन्य अभिलाषा। अन्य अभिलाषा में वो दो चीजों का वर्णन करते हैं, एक है भोग वासना और दूसरा है मोक्ष वासना। वो कहते हैं कि भक्ति करते हुए भी व्यक्ति के हृदय में ये भावना बनी रहती है, कंचन कामिनी प्रतिष्ठा आदि की, जैसे देवतागण है। हाँ, देवतागण भक्त है लेकिन उनके अंदर उनको ये भी चाहिए, भौतिक सुविधा भी चाहिए, कंट्रोल करना भी चाहते हैं, जिसके कारण देवतागण भगवान को आकृष्ट नहीं कर पाते, इसलिए उनको मिश्र भक्त कहा गया है। तो कृष्ण के सेवा के अलावा जितनी भी अतिरिक्त कामना है उनको अन्य कामना कहा गया है। उसी को ही भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं व्याभिचारिणी भक्ति। व्याभिचार का मतलब क्या है, कोई स्त्री है वो पर पुरुष का मुख देखना चाहती है या उसका संग करने की कामना रखती है, उसको कहा गया है व्याभिचारिणी स्त्री। उसी प्रकार से भक्ति है, इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं इन तीन गुणों से परे होने के लिए क्या करना होगा, अव्यभिचारिणी भक्ति। तो ये अव्यभिचारिणी भगवत भक्ति ही वास्तव में अन्य कामनाओं से रहित भक्ति है, जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सकता है या भगवान को आकृष्ट किया जा सकता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण सुखार्थ भजन, मतलब अपनी जो सेवाएं हैं अपनी जो साधना आदि है उसका एक भी उद्देश्य होना चाहिए, किसको सुख प्रदान करने के लिए, श्री कृष्ण या कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवत गीता में अनन्य भाव जो 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है जिसका वर्णन करते हुए या उसके टीका में वो लिखते हैं कि अनन्य भाव का मतलब क्या है, या कोई साधु है और वो भगवान का अनन्य भजन कर रहा है उसका मतलब क्या है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जो मेरे अतिरिक्त अन्य देवताओं का भजन नहीं करता, भक्ति के अलावा अन्य कर्म अनुष्ठान, बहुत सारे शास्त्रों में कर्म है, दान है, कई प्रकार के व्रत है, इनको नहीं करता और मेरी सेवा के अलावा किसी और कामना नहीं करता, या उसके हृदय में राज्य कामना, धन कामना, पुत्र परिजन आदि कामना उसके हृदय जिसका हृदय रहित है, वही वास्तव में अनन्य भजन करने वाला अनन्य भाव साधु कहलाता है। और उसी को ही चैतन्य महाप्रभु ने कहा है न धनम न जनम न सुंदरे कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदाद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो ये अहेतुकी भक्ति केवल भगवान को आकृष्ट कर सकती है और जिसके द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। हाँ, तो इसको नरोत्तम दास ठाकुर अन्य अभिलाषा कहते हैं, पहला कवरिंग, और दूसरा वो कहते हैं अन्य मिश्रण। अन्य मिश्रण क्या है? कर्म और ज्ञान का। तो कोई कह सकता है कि कौन सा कर्म? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं स्मृति शास्त्रों में जितने भी कर्म कांड आदि दिया है और नित्य और नैमित्तिक पूजा आदि की जो विधियां प्रदान की है, दान व्रत आदि, इनको त्याग देना। और ज्ञान कौन सा? निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, या जीव और ब्रह्म की एकता को जो ज्ञान प्रतिपादित करता है, ऐसे ज्ञान से रहित जो भक्ति है वो वास्तव में उच्च है। हाँ, भक्ति से युक्त ज्ञान वो सहायक है। एक साधक को भगवान के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और भक्ति जो विधि है उसको कैसे किया जा सकता है उसका ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान नहीं है, वो भक्ति युक्त ज्ञान है, उसको ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी कौन है? जो ब्रह्म ज्ञानी है, या जीव और ब्रह्म में ब्रह्म को अभेद रूप में समझता है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि व्यक्ति को अनन्य भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसी अनन्य भक्ति इन दो चीजों से रहित होगी तभी व्यक्ति भगवान का भजन कर सकता है। कायम अनेक करीबो भजन, मतलब शरीर मन वाणी आदि से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और वो सेवा कैसे करनी चाहिए? साधुओं के संगति में, भक्तों के संग में, भक्तों के मार्गदर्शन में। जब व्यक्ति ऐसे करता है तो निश्चित रूप से वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो आज के श्लोक में ये ऋषिगण इसी चीज को स्थापित कर रहे हैं कि वास्तव में भगवान तो केवल भक्ति के माध्यम से ही जाने जा सकते हैं। भक्ति के अलावा कोई और विधि नहीं है भगवान को समझने की या जानने की। और उसकी शिक्षा भगवान ने भगवद गीता में दी है, भागवतम में दी है, और चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण में और अपने शिक्षा में प्रदान की है। तो उस भक्ति को समझना है तो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, नित्य रूप से उन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, और वैष्णव के माध्यम से भगवत चर्चा का श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथाश्रमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की। गौर वंदे।